स्थान का नाम श्री राधा विनोद बिहारी गौड़िया मठ रखा। सब लोग यहाँ आकर के कीर्तन करेंगे, प्रवचन होगा, हम भी आएंगे। धीरे धीरे जिस समय समय होगा, कोई अच्छी कहीं जमीन इत्यादि मिल जाएगी, उस समय में कोई आश्रम छोटा खा बनाएंगे। उस समय वहां पर ये मंदिर पूरा और ये ठाकुर जी भी वहां पर पधारेंगे, इसीलिए हमने रखा था नाम श्री राधा विनोद बिहारी। गौड़ी वैष्णव के बड़े प्रिय हैं। लोकनाथ गोस्वामी जो हमारे नरोत्तम ठाकुर के गुरु जी थे, उन्होंने किशोरी कुंड से पाया था एक ठाकुर जी का विग्रह। आज भी वो विग्रह राधा दामोदर टेम्पल वृंदावन में अभी भी विराजमान है। उन्होंने उस ठाकुर जी का नाम राधा विनोद बिहारी जी रखा, लोकनाथ जी। अभी भी वो है, यहाँ पर भी है, जयपुर में भी है। और बहुत से गोस्वामियों ने इस नाम का अनुमोदन किया, रस युक्त है। राधा जी सब समय कृष्ण का विनोदन करती हैं, इसलिए यह राधा विनोद बिहारी, अथवा राधा जी की ये विनोद करते हैं, खुशामत करते हैं, पलियां पढ़ते हैं। उसे कहते हैं, अब मैं ऐसा कसूर नहीं करूंगा तुम्हारे साथ, एक बार हमको क्षमा कर दो। और राधा जी कहते हैं कि मैं काले लोगों से हमारा कोई संपर्क नहीं, यहां से चले जाओ। रामचंद्र जी ने सीता जी को कहा कि तुमको हमने जीवन भर के लिए त्याग कर दिया। कृष्ण ऐसा राधा जी को कह सकते हैं? क्यों? वो कहीं मैं तुम्हारा खाती हूं या पीती हूं, तुम्हारा किस लिए? तुम्हारे घर की चेरी हूं, तो विवाह लाया हमको, सुना देंगे जली कटी दो चार, कहिए तुम खैर क्या तो हमारे पास में होता ना, काले लोगों से हमारा कोई संपर्क नहीं, कह देंगे। और वो खुशामद करेंगे, कभी गोपी बनकर के उनके पास में जाएंगे, कभी कुछ जाएंगे, कभी राधा कुंड में तीन बार स्नान करके उनकी आराधना करेंगे। इसलिए उनका नाम पड़ गया राधा विनोद, राधा जी का सब समय जो विरोधन करने वाले। और अपने प्राण को भी कृष्ण के नख की प्रभा की चंद्रिका पर अपने कोटि कोटि प्राणों को न्योछावर कर देती हैं राधा जी, अपना उनका सुखना। इसलिए कृष्ण उनके वशीभूत रहते हैं एक दूसरे के लिए, समझ रहे हैं ना। कृष्ण की पदनख चंद्रिका, वो भी ये नहीं, पदनख की जो चंद्रिका की शोभा पर है, उस पर राधा जी अपना सर्वस्व, तन मन धन हृदय सब कुछ न्योछावर कर देती हैं। और कृष्ण क्या करते हैं? कृष्ण अपना सर्वस्व उनके चरणों में दे करके राधा जी के लिए चरणों में महावर होता है। महावर जानती हूं, महावर रंगीन लाल रंग का अवतार, उसको महावर भी कहते हैं, वो तरह तरह से रंगते हैं उसको। और कृष्ण क्या करते हैं? महावर लगा करके अपने सिर पर छाप ले लेते हैं, इतना प्यार करते हैं। इसलिए उनका नाम पड़ा क्या? राधा विनोद बिहारी। एक दूसरे में कोई अंतर नहीं है। जल और बीची में, जल में और उसकी तरंग में जो अंतर है, इन दोनों में वही अंतर है, ऐसा तो नहीं है। कहिए तो भिन्न न भिन्न, कहो तो भिन्न है लहर पानी से, किंतु पानी और पानी की लहर तरंगे एक ही है। वैसे समुद्र है कृष्ण और तरंगे कौन है? जो समुद्र में तरंगे नहीं, वह समुद्र बेकार का है। इसलिए राधा जी उनका विनोदन करती है। विनोदन करने की वजह से उनका एक नाम गोविंद पड़ गया। गोविंद है ना, गोविंदती, गोविंदती मैंने क्या, गायों को, गोवत्सों को, ग्वालों को, गोपियों को। गोपियों में जो सर्वश्रेष्ठता है कौन?
राधा जी
उनका आनंद बढ़ाते हैं जो उनका नाम है। सभी एक अर्थवाचक हैं, राधा जी को छोड़ करके उनका कोई भी नाम उनको पसंद नहीं है। लोग कर देते हैं, केवल कृष्ण कहते हैं, किंतु उसमें सी जो लगा है राधा जी के लिए है, तभी वो श्री कृष्ण होगा। इन्हें इन सबको विचार करके हमारे रूप सनातन इत्यादि जी ने सब ठाकुर जी का नाम ऐसा प्रकाश किया है जो नित्य ही प्रकाशित है। गोलोक वृंदावन, वहां से वो नामों को लाते हैं। सबसे कृष्ण को पसंद है, राधा जी से जो संबंधित जो नाम है वो, जैसे हे कृष्ण करुणा सिंधु। कृष्ण करुणा सिंधु है, भक्त ने कहा ये हमको ये प्यारा नाम करुणा सिंधु है तो होने दो। भक्तों की से संबंध नहीं है तो तब फिर क्या है? इसलिए हे कृष्ण सिंधु दीन बंधु, दीनों के बंधु ठीक है रहिए, दीन बंधु जगत पति, आप जगत के पति हैं ठीक है आप रहिए, अभी प्रसन्न नहीं हो रहा है ठीक है कहा गोपेश गोपों के फिर भी मन में कुछ बना रहा अभाव। गोपिका कांत चित्त प्रफुल्लित हुआ किंतु पूर्ण नहीं हुआ, फिर इसलिए क्या कहा? तब नमस्ते किया, इसके पहले नहीं किया। इसलिए इसकी महिमा समझनी चाहिए। इसलिए आज से ये ठाकुर जी का नाम श्री राधा विनोद बिहारी। इसी नाम से सेवा करेंगे आप लोग। राधा जी कृष्ण का विनोदन करती हैं, इस अर्थ को कोई कोई लेगा, किंतु आप एकांतिक लेंगे जो कृष्ण राधा जी का विनोदन करते हैं, ये नाम यहाँ पर हम दे रहे हैं, है ना? समझ रहे हैं ना? कृष्ण ही राधा जी का विनोद, ये हमारा गौड़ीय संप्रदाय का अपना विचार है। कृष्ण अंतर्ध्यान होते हैं, गोपियां खोजती हैं, हम उसके उपासक नहीं है। राधा जी अंतर्ध्यान हो और कृष्ण उनकी आराधना करके खोज रहे हैं, हा राधे तू कहाँ, ये भावना होनी चाहिए। इसलिए राधा विनोद बिहारी हमारे गुरु जी ने नाम रखा। खोज रहे हैं कृष्ण, उनको ढूंढ रहे हैं, और ढूंढते ढूंढते कैसे हो गए? गोरे हो गए। यहाँ पर कैसे हैं? देखो राधा जी का रूप ले लिया है ना, काले नहीं है। कृष्ण की चिंता, राधा जी की चिंता करते 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 भाव में विभोर होकर के गोरे रंग, ये सिद्धांत सम्मत है और रस में बहुत ऊंचा है। इसलिए आप इनकी आराधना करेंगे, हम लोग इसी नाम से इनको जानते हैं। कितना बच गया? सवा बारह। एक केवल कहूंगा, एक उपदेश जिसको धारण करने की चेष्टा करेंगे आप। क्या प्रहलाद महाराज जी हजारों असुर बालकों को बुला करके कुछ उपदेश कर रहे हैं? उपदेश क्या? बच्चे करेंगे हम खेलेंगे, वो कहते हैं खेलेंगे कल, आज तो थोड़ी हमारी बात सुन लो। तो आप लोग कौमार कौमार आचार्य प्राथियो धर्मान भगवतान, इस दुर्लभ मनुष्य के जन्म में आप समझ रहे हैं या समझ रही हैं कि बहुत सस्ता ये मनुष्य जन्म मिल गया? खबरदार ऐसा मत समझो, बहुत भगवान की कृपा है जो आप लोग मनुष्य का जन्म पाया। व्यर्थ मत गवाओ, प्रहलाद महाराज जी का बचपन से ही भगवान का भजन। कौमार, कौमार माने क्या? ये बच्चा अभी जिनका अन्न प्रसन्न, ये कुमार है अभी छोटे, उसी समय से ही भगवान का भजन करो। बच्चों ने कहा जब भी खेलें कूदे बड़े होंगे, अरे भैया तू कल बचेगा कि मरेगा कोई ठीक है? अस्पतालों में जाओ देखो ये कितने छोटे छोटे बच्चियां बच्चे, जिनको मरना नहीं चाहिए वो मर रहे हैं, बूढ़े लोग ठीक हैं, किसी का कोई गारंटी नहीं है ये कब क्या हो जाएगा। अभी आज ही कौन कोई कह रहा था कि हमारे पति बहुत तंदुरुस्त थे, व्यायाम करते थे, दौड़ते थे, हाँ, और 50-55 वर्ष की उम्र होगी,
आयुर्वेद के बड़े माने हुए डॉक्टर थे, सब लोगों की चिकित्सा करते थे, बड़े तंदुरुस्त थे। और वहां से आए 10-20 आदमी पकड़ करके ले आए घर में, क्या हुए पकड़ करके क्यों ले आए, तो मुझे शरीर कुछ दर्द हो रहा। और शाम तक डॉक्टर बुलाए गए, इसके बाद डॉक्टर अस्पताल में भर्ती हुए और फिर किसी का कोई पता नहीं। अभी प्लेन से जा रहे हैं, सुना हमने कहीं कुछ दिन वर्षों पहले 300-400 आदमी प्लेन से जा रहे हैं और बस 3 दिन फेल हो गया, बस समुद्र के गर्भ में चले। कहीं नया घर बन रहा था, छत गिर गया, 1000 आदमी मर गए। अभी हठात रात में 12 बजे बाढ़ आई और कितने आदमी चले गए किसका कोई ठीक नहीं। अमेरिका ने एक बम हिरोशिमा या जापान में कहीं फेंक दिया, 2-4 आदमी मरे थे कि नहीं मरे थे, 2-4 आदमी, और कितने लंगड़े लूने बन गए और गर्भ से जो बच्चे जन्मे वो क्या हो गए। और नए नए बम बन रहे हैं सब, लेकिन किस दिन फड़क उठेगी आग कोई नहीं जानता। इसलिए कल के लिए मत छोड़ो, काल करो सो आज कर, आज करो सो अब, पल में परलय हो बहुत। ये मत कहो आज करो सो कल करो, कल करो सो परसों, क्या खटखट में पड़े हुए हो समय पर। हम लोग ऐसा ही कर रहे हैं, अभी कल तैयार होंगे। अरे समय का कोई ठीक नहीं, परीक्षित महाराज जी को 7 दिन का समय था, हमारा कोई भी समय नहीं। आज जब मरने का होगा तो हमारे पति और स्त्री, पति की पुत्र और सारा विश्व, सारा जहान, सारी सेनाएं, कुछ भी 1 सेकंड के लिए किसी को बचा करके नहीं रख सकती। रखने वाला मरने वाला वो प्रभु है, इसलिए आज से ही अभी से तुरंत भगवान का भजन आरंभ कर दो। ये कौन कह रहा है? और एक इसके बाद में कहा, देख दुख के लिए तू परिश्रम करता है कि नहीं, दुख आ जाओ, हे दुख महाप्रभु जी आप पधारिए। कोई कहता है? दुख नहीं बुलाता, ऐसा काम करता है जो दुख हमारे दरवाजे से बाहर रहे, है ना। बुढ़ापा कोई चाहता है? अच्छा हाँ बताओ, इसमें कौन कौन सी लड़कियां हैं जो बूढ़ा होना चाहती हैं अभी? कोई नहीं, कोई नहीं। मरना कौन चाहते हैं? कोई नहीं। किंतु ऐसा कोई माई चालाल जन्मा है जो बूढ़ी नहीं होगी, बुरा नहीं होगा, दांत टूटेंगे, सौंदर्य बिखर जाएगा, जगत यहीं रह जाएगा, शरीर भी यहीं रह जाएगा, और तुम न जाने कहां चले जाओगे। सुख जब अनेक होता है अपने आप, जैसे दुख आ जाता है, हम दुख नहीं बुलाते हैं, दुख लिए कोई भी चेष्टा नहीं करते हैं, दुख अपने आप आ जाता है, आता है ना। कहते हे प्रभु आप दुख हमको मत दी, दुख लिए कोई काम नहीं करते। एक आदमी बैंक से 50,000 रुपया निकालने के लिए गया और बड़ी इसे लेकर के घर में आया, लोगों को पता लग गया हमारे बंगाल में नवद्वीप के पास में, और एक साथ में 12-14 डकैत आकर के ये आज रुपया निकाला है इसके पास में होगा। रात में आए, दरवाजा उसका तोड़ करके, काट करके, फेंक करके, घर वालों को अंततः 2-3 आदमियों को साथ ही साथ मारा और सारा रुपया लेकर के चले गए। सुख के लिए रुपया निकाला, सुख के लिए अपना जमा किया, किंतु हुआ क्या? ऐसा ही होता है। इसलिए दुख जब आता है बिना बुलाए आता है, तो तुमने जब भी सुख का कर्म किया है तो वो सुख बिना बुलाया आएगा, खोदा देगा, कैसे देगा? छप्पर फाड़ करके वो देगा। तुम चाहोगे जो मत जाओ तभी आएगा। हमारे मामा जी थे, मामा जी समझते हो, हमारे मैया के भाई, गंगा जी निकट ही में रहती थी, बहती थी, अभी भी बहती है। बचपन में मैं मामा जी के घर पर रहता, बहुत जाता आता था, तो मामा जी हमारे गंगा में स्नान करते थे। तो स्नान करने गए एक दिन, तो देखा कि आज इसे पैर में कुछ लग रहा है। कहिए क्या पैर में लग रहा है? बार बार लग रहा है। तो पैरों से हटाया तो भी फिर देखा कि फिर लग रहा है। तो भैया यदि हमारे साथ ही आना है तो तुम पानी से निकल करके हमारे पास में आओ। तो देखा जैसे वो एक सुंदर सा पीतल का घड़ा उनके सामने आया, देखा तो ऐसा इधर उधर कहा भाई इसमें तो सोने की मोहरें पूरी भरी हुई है। उन्होंने कहा कि जब यहां तक हमारे साथ में आए हो तो मैं तुमको नहीं छूंगा, तुम हमारे पीछे पीछे ऐसे यदि चल करके हमारे घर में पहुंच जाओ तो मैं समझूंगा, और नहीं तो हमको तुम्हारी जरूरत नहीं। सचमुच में आगे बढ़ते गए, घर आए और उनके पीछे पीछे वो सब चला है। ये कहानी नहीं है, सत्य बात है। वो कहते थे बड़े धनी आदमी हो गए पीछे। तो खुदा जब देता है ना तो ऐसे ही छप्पर फाड़ करके देता है। वैसे दुख जब आता है तो बिना बुला, तो सुख भी आएगा तो होगा तो जरूर मिलेगा, लाख कोशिश करेगा। सारी भारत की सेनाएं इंदिरा गांधी के लिए लगी हुई थी, जानते हैं सुने हैं ना, और उन्हीं के अंगरक्षक ने उन्हीं को गोलियों से, हजारों गोलियों से उन्हें उड़ा दिया। तो इसलिए जीवन का ठीक नहीं है, काल करो सो अज और आज करो सो अब, पल में पर लय होएगी बहुरी करोगी करो। इसको याद रखो, परमार्थ इतना सस्ता नहीं है। इसलिए उसमें जो कहते हैं जिनके लिए हम कहने से अभी नहीं कर रहे हैं, तैयार नहीं हो रहे हैं, वो कभी भी अपनी रक्षा कर सकते हैं तो हमारी क्या रक्षा करेंगे। इसलिए अपने इंटेलिजेंस का प्रयोग करना चाहिए, क्या भला है क्या बुरा है, और जल्दी से जल्दी एक सेकंड की यदि करोगे पल में परलय होगा। एक छोटी सी लघु कहानी कह करके समाप्त करूंगा। एक बहुत ही दरिद्र ब्राह्मण था, चल नहीं पाता था बेचारा, लठिया लेकर के चलता, आंख भी नहीं थी, अंधा था, कहीं से मांग जूं करके कुछ खा लेता था। रोजी वो सवेरे भिक्षा के लिए निकलता, कुछ दो एक रोटी या कुछ मिल जाती उससे जीवन निर्वाह कर लेता। नींद आ रही है, नींद नहीं आनी चाहिए किसी, तो वो लठिया लेकर के चला। आज उस घर को नहीं मिल रहा, एक चार दीवारी मिली, चार दीवारी मैंने
घेरा बन दिया,
टूटे का घेरे की दीवार लंबी चौड़ी मालूम हुई। मस्किल से ढूंढता हुआ उसको दरवाजा मिला, दरवाजा कितना लंबा चौड़ा, तीन हाथ का, साढ़े तीन हाथ का या तीन हाथ का दरवाजा मिला, और चौड़ा कितना, बस इतना एक हाथ के बराबर, उससे भी कम, और दरवाजा मिला, उसमें घुस गया। राधे राधे इत्यादि या जैसे भिक्षांग देही करते हैं उसे से मांगता हुआ घुसा। उसने एक अपना हाथ दीवार पर रख दिया ये कहीं दरवाजा न भूल जाऊं, फिर लौट करके आऊंगा जैसे फिर आकर के निकल जाऊंगा, और एक हाथ ऐसे रख करके दूसरे हाथ से लठिया ले ली और पुकारता हुआ जो कोई हो भिक्षा दे दो भिक्षा दो, तो ऐसे करता हुए चला। और वो जो दीवार थी कितनी थी लंबी, चौरासी मील लंबी थी, और घूमते कितने दिनों के बाद में जब आया दरवाजा अब आने वाला था, उसको खुजलाहट हुई थोड़ी सी, है ना, सोचा जी आज इतने वर्षों तक वो दरवाजा नहीं मिला तो थोड़े भी आ जाता है, इसलिए एक हाथ से डंडा पकड़े हुए और दूसरा हाथ जो दीवार पर था वो हटा लिया और खुजलाया, इतने में अढ़ाई हाथ एक हाथ की जो दरवाजा था वो पार हो गया, और फिर हाथ रखा फिर दीवार आई और फिर चलो घूम निकल। ऐसे ये 84 लाख मील योजन की ये संसार है, जन्म मरण है, बड़ी मुश्किल से अढ़ाई हाथ का ये तीन हाथ का ये मिला है दरवाजा, ये इसी में से हम पार हो सकते हैं और किसी जन्म में नहीं। इसलिए अभी तुरंत जल्दी से जल्दी भव सागर को पार कर लो, नहीं तो फिर मौका नहीं आएगा, न जाने बैंक होंगे, बैंक जानते हैं, बैंक बैंक मैंने क्या
मेढक
शुकर होंगे पेड़ होंगे पौधे होंगे पर्वत होंगे एक पर्वत में करोड़ों वर्ष लग गया एक पर्वत का जीवन जीवित पर्वत होते हैं उनमें जीवन होता है हिमालय भी बढ़ रहा है हम लोग जब भूगोल पढ़ते थे उस समय में 29,000 कितना फूट था और वो बढ़ते बढ़ते और भी बढ़ गया हमने एक छोटा सा पत्थर देखा निकला और कुछ दिनों के बाद देखा तो अब इतना बड़ा हो गया उसमें भी जीवन है पत्थर हो करके जरिया जैसे हो गए हैं गौतम की पत्नी ऐसे पत्थर का भी जन्म हो जाएगा उसमें ऊपर से चोट पड़ेगी मालूम आप उसे छुटकारा नहीं मिल सकता पेड़ होंगे आपके जिसको हाथों को काट लेंगे लोग कुछ कर नहीं सकेंगे दिन रात खड़े हो जरा 5 मिनट ऐसा हाथ रखो तो देखो तो 5 मिनट के बाद में 10 मिनट 1 घंटा 2 घंटा रखो बस और वो लोग खड़े हुए वर्षा ग्रीष्म कितने हजारों वर्षों तक इसलिए कष्ट इसलिए अभी से ही भगवान का स्मरण कोई आयास कष्ट नहीं है कुछ बुराइयां छोड़नी है बुराइयों को छोड़ो अच्छाइयों को ग्रहण करके भगवान का नाम करो थोड़े दिन में देखो सुख शांति सब कुछ दुख आ रहे हैं हमारे पूर्व जन्मों के कर्म के फल से या इस जन्मों के कर्मों के फल से इन्हें बुरा कर्म मत करो कोई तुम्हारा शत्रु नहीं है अशांत मन जो है जो बसीभूत नहीं है स्वतंत्र मन यही हमारे दुख का सुख का कारण है इसलिए मन को शांत करके भगवान का भजन करो जो कुछ पाओ भगवान के कृपा से उनको अर्पण करके सब पाओ यहां तक पाओ और सब समय हरिनाम करो संसार करो ठाट के साथ में समझो कि हमारे सब कृष्ण के दास दासी हैं हमारे बच्चे कृष्ण के दास दासी हैं बस रहो ऐसा रह करके सुखमय संसार में रह करके भगवान का भजन करके इस संसार में फिर मत आना किसी को सुख नहीं है अभी नहीं मालूम हो राज्य बुढ़ापा आएगा जब चल फिर नहीं सकेंगे और लड़के और नाती घर से नहीं मर क्यों नहीं जाता उस समय हृदय में बाण लगेगा इसलिए अभी से चेत करके क्या करें हरे कृष्ण जाना है अभी हमारा पासपोर्ट है यहाँ जाने के लिए किंतु वहाँ का कहाँ जाना है मरने के बाद में और हम अपने जीवन में कैसे सुखी होंगे भविष्य में क्या होगा इसके लिए भी मनुष्य विचार थोड़ा सा विचार करने से जो इस विश्व की सृष्टि सृजन स्थिति इत्यादि किया है थोड़ा सा प्रभु मैं तुम्हारा बस इतना ही कह देना प्रभु आपका सब कुछ ग्रहण कर लें जो विश्व का सृजन इत्यादि पालन पोषण कर वो हमारा नहीं पालन पोषण करेंगे जरूर करेंगे ये बुढ़ापा की स्थितियां हमारी नहीं है ये तो कपड़े की है इस चीज को कैसे आप समझेंगे गीता जैसा दूसरा ग्रंथ विश्व में अभी नहीं है उसमें जो कुछ समस्या है उनका हल निकाला गया उसको जरूर कभी कभी देखेंगे प्लीज आप लोग तो विद्वान आदमी हैं ये भी परम विदुषी महिला है आप भी विद्वान हैं सभी लोग सोचेंगे एक आदमी बहुत बड़े फैमिली में जन्म लिया और उसी समय में एक आदमी अंधा लंगड़ा और शरीर का लुंज भुंज पैदा हुआ क्यों हुआ ऐसा कहो जैसे वो बाई चांस ऐसा हो गया बाई चांस तुम अपने तुम्हारे दिमाग में नहीं आ रहा यह जीवन जो है पूर्व जन्म का दर्पण है जैसा तुमने किया है वैसा ही तुमको ये हो रहा है और यह जन्म में जो तुम क्रियाएं कर रहा है जैसा कर रहा है ऐसा ही उसमें होगा जैसा तू बीज बोएगा अपने कर्मों का ठीक वैसा ही आपको मिलेगा इसलिए क्यों नहीं अच्छे सत्कर्म किए जाए, भगवान का कुछ भजन किया जाए, यदि ये नहीं किया तो कुछ नहीं। भागवत में सबसे पहले इसी का जिक्र है, सबसे पहले नारद जी और व्यास जी से भेंट हुई। व्यास जी ने कहा कि मैंने वेदों का विभाग कर लिया है और जीवों के कल्याण करने के लिए जो जो कुछ धर्म और नीतियां हैं सबको मैंने महाभारत में लिखा, गीता में एक दिव्य संदेश दिया जिसके के द्वारा सबका उपकार हो, किंतु मुझे तृप्ति नहीं है। आप गुरु हैं बताइए, अब मैं इतना ज्ञान होने पर भी, ज्ञानी होने पर भी मैं नहीं समझ सका कि क्यों हमारे अंदर में अभी तक संतोष नहीं आया, मेरे अंदर में क्या कमी है। नारद जी हंसने लगे, तुमने लोक के कल्याण के लिए ये सब किया, तुम्हारा जीवन ही लोक कल्याण के लिए है, अपने लिए कुछ नहीं, तभी तुमने कृष्ण को भगवान के रूप में ग्रहण नहीं किया और उनकी लीला कथाओं की महिमा कथा का वर्णन नहीं किया, उनको सरेंडर नहीं किया, इसीलिए आज तुम्हारी दुर्दशा है। मैं कैसे समझूं? भगवान के चरणों में अपनों को समर्पण करके उनकी चिंता कर, उनकी लीलाएं अपने आप फिल्म के रील में की भांति आने लग जाएं और उसे देख करके तुम्हें हृदय में बोध होगा और फिर उसी को संसार में प्रचार करो, कृष्ण की लीला कथाओं का, जिसके कहने से भगवान तुम्हारे कान के माध्यम से हृदय में बैठ जाएंगे और हृदय की जितनी ग्रंथियां हैं, ग्रंथि समझते हैं ना, गांठें हैं, क्या गांठ, मैं मनुष्य हूँ, मैं उसका पिता हूँ, मैं उसकी मैया हूँ, मैं उसका भैया हूँ, यह सहार सब मेरा है, ये बगीचे का मैं मालूम, ये सब हमारे पालतू पशु हैं, ये हमारा वैभव है, ये मेरी विद्वता है, यह सब फाल से वो भूल जाओ, मरने के समय में ये सब धरा रह जाएगा, बस तुम्हारा भगवान के प्रति जो शरणागति है वही तुम्हारा खोल देगी दरवाजा वहाँ के लिए और तुम्हारा ज्ञान सब अपने आप सब कुछ आ जाएगा और भगवान में प्रेम होगा। आप जितने भी विद्वान हो, ये जितने भी विद्वत विद्वान हो, जितने भी कोई गुणी हो, यदि आपके घर में कोई आया प्रेम से, आइए पधारिए, यदि नहीं कहा कोई आएगा, प्रेम यदि नहीं है, नहीं है, एक कुत्ता भी आएगा आपके भाव को देख करके लौट जाएगा और प्रेम देखेगा तो वो प्रेम की भाषा ही दूसरी होती है, पूंछ हिलाते हुए आपके पास में आ जाए, ये प्रेम चीज है। यदि प्रेम नहीं, यदि पत्नी के प्रति प्रेम नहीं हुआ और पत्नी का अपने पति के प्रति प्रेम नहीं हुआ तो ये सारा वैभव रह करके ही क्या करेगा, जीवन उथल पुथल हो जाता है। लोगों के साथ में प्रेम और प्रीति पूर्वक व्यवहार नहीं की तो ये सबका मूल्य क्या है। ये प्रेम का सीखना बहुत जरूरी है, यही हमारा धर्म है, क्योंकि सभी सुख चाहता है, सुख कैसे आएगा, प्रेम नहीं रहेगा, दूसरों के प्रति प्रीति नहीं रहेगी तो तुमको कौन प्यार करेगा। इसलिए ये प्रीति सबसे मुख्य चीज है, प्रेम मुख्य, यही जब भगवान के प्रति रिफाइंड होकर के जब लगता है बिना किसी शर्त के, बिना किसी आशा से, अनकंडीशनल सरेंडर करके शुद्ध प्रेम से, प्रभु आप तो जीवों के प्रति भी उसका प्रतिफलन होता है, जीवों के प्रति भी अपने आप प्रीति होने लगती है, सभी प्राणी उसे आदर करते हैं। सुखदेव गोस्वामी को जो लंगोटी भी नहीं पहनते थे उनको संसार से क्या मतलब, किंतु वो जाते हैं कथाएं कहते हैं और सब लोगों को भगवान के तरफ मिले, क्यों, यही उनकी दया है। वो यदि जंगल में जाएंगे उनको मारेगा कोई, घड़ी छीनेगा, घड़ी तो है ही नहीं है, सोने का कंगन कोई है नहीं है, उनके पास एक लंगोटी भी तो नहीं है जो कोई ले जाएगा, वो जहां तहां निर्भय होकर के रह सकते, हम आप नहीं रह सकते, सब समय हमारे अंदर में डर है, एक तो मृत्यु का डर, दूसरों से भी डर, प्रतिवेशी से भी डर, उनसे डर, शंका सब समय, अभी न जाने पेट में क्या गड़बड़ी हो जाए, कोई ठीक नहीं, यह शरीर
बड़ा संदरुस्त और देखते एक ही दिन में अभी कहीं गए थे, एक ही दिन में उसके सामने बेचारे बड़े तंदुरुस्त डॉक्टर खुद कोई ठीक नहीं। जितना दिन हम हैं यही बड़े आश्चर्य की बात है। इसलिए पहले प्रीति सीखी जाए निस्वार्थ रूप में। पहले लोग कोई चीज दान करते थे, एक राजा था रघु उसका नाम था, रामचंद्र के पहले मुंशी बंसी, बड़े कपड़े लत्ते और सब चीजें अन्न इत्यादि दान करते लोगों को जो जरूरत होती है, तो ऐसे ऐसे दान करते थे। उधर देखते नहीं थे दाता को, तो किसी ने पूछा जी आप ऐसे क्यों करते हैं। मैंने कहा कभी मेरे अंदर में अभिमान ना आ जाए कि मैं देने वाला हूं, देने वाला तो और कोई है, अभिमान ना आए। ऐसा ही ये हाथ से देते हैं, ये हाथ जानने न पाए तुमने क्या दिया, प्रभु का दिया हुआ प्रभु के लोगों को दिया, तुमने क्या दिया। इसका अभिमान जब नहीं रहेगा और भगवान के प्रति प्रेम होने लग जाएगा।